परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पहला तिमोथियस नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। ओ धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन होगा धन्य जीवन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला तिमोथियस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एक कलीसिया में प्राचीन या अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए जिसे आपने हम सबको दान स्वरूप दिया है। आज हम जीवित इसलिए हैं क्योंकि आपकी दया है। हम अपने अच्छे और भले कामों के द्वारा जीवित नहीं हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो हम समझ सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। पिताजी, हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और दबाव में हैं। आप उन्हें भी अपनी शांति, अपनी चंगाई प्रदान करें। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, तिमोथियस को लिखे पौलुस के इस प्रथम पत्र में हम देख रहे हैं कि अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्देश दिया जा रहा है कि कलीसिया के सेवकों या पदाधिकारियों की योग्यताएं क्या हो। सेवकों का आचरण, स्वभाव एवं संपूर्ण चरित्र कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण हो और क्या अवगुण न हो, क्योंकि कलीसिया को समाज में अपना एक विशेष प्रकाशन प्रकट करना है। परंतु सावधान, कोई यहां यह न समझे कि ये निर्देश केवल सेवकों के लिए है। प्रत्येक विश्वासी एक सेवक है और वह विश्वासी जो कलीसिया में कोई पदभार संभालना चाहे, वह विशेष करके इस विषय में सावधानी रखे, उसे पदभार सौंपा जाए। तो आइए हम देखते हैं उपसेवकों की योग्यताएं। पहला तिमोथियस की पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। यहां पर डीकन का अर्थ है सेवक। पौलुस और अपोलोस को सेवक कहा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 28 पद में प्रभु यीशु सेवक है। रोमियो के पत्र 13 अध्याय उसके 4 पद में सरकारी अधिकारियों को भी सेवक कहा गया है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसके 15 पद में यह शब्द शैतान के दूतों के लिए काम में आया है। कहने का अर्थ है कि सेवक शब्द कर्मियों के लिए आम तौर पर काम में लिया जाता था। मेरे प्रियो, हम प्रेरितों के काम अध्याय 6 में आरंभिक कलीसिया में सेवकों के पद का उद्भव देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास उन्हें कलीसिया में सेवक नियुक्त किए जाने का बाइबल निहित आधार है। सेवक, उपसेवक, यद्यपि कलीसिया के भौतिक प्रावधान से संबंधित है, उसे आत्मिक जन होना अनिवार्य है। आज हम किसी सेवक को आत्मिक योग्यता की अपेक्षा सांसारिक योग्यता के आधार पर नियुक्त करते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है। हम सोचते हैं कि यदि कोई मनुष्य एक सफल व्यवसायिक है तो वह एक सफल सेवक भी होगा। आज बहुत सेवक इसी आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। मैंने पहला तिमोथियस में बल देकर के कहा है कि स्थानीय कलीसिया को समाज में अपना प्रकाशन प्रकट करना है और इस काम में उसे व्यवहारिकता पर उत्तर आना है। कहने का मतलब है कि जो सच्चा है उसी को आपको सामने लाना है। जैसे निर्माण कार्य, बिजली की व्यवस्था और अनेक अन्य भौतिक विषय जो उत्साहवर्धक न हो, परंतु फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलीसिया को इन सब बातों के उपरांत भी समाज में आत्मिक सेवा करना है। कहने का मतलब है कि आत्मिक सेवा आपको देना है। हम प्रायः सांसारिक योग्यताओं को सबसे पहले रखते हैं, जबकि आवश्यक यह है कि पदाधिकारी अपने पद के निमित्त आत्मिक योग्यता रखे। किसी ने कहा है, जब कलीसिया उस संसार से संबंध नहीं रख पाती है, तब वह इस संसार से भी संपर्क तोड़ देती है। मेरे मित्रों, मैं इस कथन से 100% सहमत हूँ। जब तक आत्मिक पक्ष पर बल ना दिया जाए, तब तक कलीसिया सांसारिक उपलब्धि भी प्राप्त नहीं करेगी। अतः उपसेवकों में भी आत्मिक योग्यताओं का होना अनिवार्य है। तब हम आगे देखते हैं कि गंभीर सेवकों को मर्यादा का पालन करना है और उन्हें गंभीर होना है। और तब लिखा है दो रंगी, सेवक बात का बतंगड़ ना हो, मुंह पर कुछ कहे और पीठ के पीछे कुछ बात ना करे, उसके वचनों का मूल्य हो, उसमें बल हो, सबको प्रसन्न करना या अपने पांव पर खड़ा होना कठिन कार्य है। एक डरपोक मनुष्य और एक तानाशाह में बराबर संतुलन होना चाहिए। जी हाँ, आपको सही दिशा निर्देश देना है ताकि सब आपके निकटता में उन बातों को समझ सकें, ना कि एक तरफा हो। और आगे वह कहता है पियक्कड़। बाइबल संयम की शिक्षा देती है और यह एक महत्वपूर्ण गुण है। मेरे विचार में बाइबल संपूर्ण त्याग का आदेश नहीं देती है, क्योंकि दवाइयों की कमी के कारण उस युग में मदिरा अर्थात दाखरस को दवा के समान काम में लिया जाता था। पहला तिमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 23 पद में हम देखेंगे कि पौलुस तिमुथियुस को पेट की परेशानी के कारण दाखरस पीने का परामर्श देता है। आज भी अधिकांश दवाओं में अल्कोहल की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दाखरस अर्थात अल्कोहल या शराब पीना आरंभ कर दें। मेरे मित्रों, आज दुखद बात तो यह है कि बहुत सारे मसीही जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं पियक्कड़ हो गए हैं और इस तरीके से वे कलीसिया और मसीही समाज को बदनाम करते हैं, जबकि बाइबल हमें इसके लिए मना करती है और हमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, अर्थात हमें पियक्कड़ नहीं होना है। आज मदिरा के साथ हमारी समस्या है कि हम उसे नशे के लिए काम में लेते हैं। अतः कलीसिया को उसके संपूर्ण त्याग पर जोर देना चाहिए। जो कलीसिया में आते हैं उनको शिक्षा देना चाहिए। और मेरे विचार में एक विश्वासी को मदिरा ताजगीदायक पेय स्वरूप काम में नहीं लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं पौलुस कहता है नीच कमाई का लोभी ना हो, अर्थात धन का लोभ उसमें ना हो, उसे निष्ठापूर्वक कलीसिया के पैसों का उपयोग करना चाहिए। पैसों के दुरुपयोग का दोष सेवक को और कलीसिया को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। जिस काम के लिए पैसा निर्धारित किया जाए उसी काम में उसे लगाना चाहिए, ना कि किसी और काम के लिए, जैसा कि आजकल हम कलीसियाओं में देखते हैं। मैंने देखा है कि कलीसिया के अधिकांश अधिकारी सत्यनिष्ठ हैं, परंतु एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक छोटा समूह ही पैसों की गड़बड़ी करता है। यदि संसार के समक्ष कलीसिया कुछ प्रकट कर पाए तो वह एकमात्र पैसों के संबंध में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक बातों में ईमानदार हों, सत्यनिष्ठ हों। परंतु इस स्थान पर हम में से कई लोग बिछुड़ जाते हैं, भटक जाते हैं और वही कार्य करते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। और यही कारण है कि पौलुस इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहता है कि हम पैसों के लोभी न बने। तब वह आगे कहता है पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद में, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। विश्वास के भेद को अर्थात प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रकाश को पौलुस विश्वास कहता है, तो आप यह न समझें कि वह एक भाववाचक संज्ञा का उपयोग कर रहा है। विश्वास से उसका अर्थ है विश्वास की शिक्षा। वह विश्वास को एक भेद कहता है क्योंकि ये शिक्षाएं पुराने नियम में प्रकट नहीं थी, ये शिक्षाएं अब नए नियम में प्रकट हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि आरंभिक कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा पर चलती थी और प्रेरितों की शिक्षा आरंभिक कलीसिया का विश्वास थी। यही आज की कलीसिया का भी विश्वास होना चाहिए और कलीसिया को संसार में यह विश्वास प्रकट करना है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि आज यह विश्वास पुराना हो गया है और इससे बदलना चाहिए। एक बबार किसी पत्रिका में 7 घातक पापों की नई सूची दी गई थी, जिसमें उन्होंने इन पापों की सूची दी थी। कृपया आप भी सुने। स्वार्थ, असहिष्णुता, उदासीनता, निर्दयता, उत्पात और विनाशकारिता। इस सूची में लालच के स्थान पर दिखावटी शालीनता थी, क्योंकि उनका कहना है कि लालसा अब एक सिनेमा हॉल के समान पुरानी हो गई है। उन्होंने पेटूपन को भी हटा दिया था। वे सोचते हैं कि यह शारीरिक समस्या है, आत्मिक नहीं। अभिलाषा और आलस्य को अब पुराना माना जाता है। उनका कहना है कि समाज के अलग अलग वर्गों की अपनी अपनी पाप की व्याख्या है। उदाहरण के लिए, युवा वर्ग के लिए अप्रासंगिकता और दिखावा पाप की सूची में सबसे ऊपर है। विनाश उनके लिए तब ही पाप माना जाता है जब पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, जबकि वयस्क की सूची में शोर, बाल और असभ्यता पाप है। कुछ लोगों का कहना है कि यह नई सूची पाप के पुराने ही नामों को नए रूप में प्रकट करती है। उदाहरण के लिए, लालसा के स्थान पर स्वार्थ लिख दिया गया है। उस लेख में यह प्रयास किया गया था कि पाप के पुराने नाम अब प्रचलन में नहीं है, उन पापों को बदलना चाहिए। मेरे मित्रों, यदि पाप को आधुनिक नैतिक प्रभाव प्रकट करना है तो किसी प्रकार के नए लेखों की आवश्यकता नहीं है। उसने अंत में लिखा कि पाप के विचार को बनाए रखना लाभकारी है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं मानता हूं कि पाप के विचार को बनाए रखना लाभकारी है, परंतु मैं कहता हूं कि पाप में परिवर्तन नहीं आया है। बाइबल जिसे पाप कहती है वह आज भी पाप ही है। मानव स्वभाव आज भी वही मानव स्वभाव है। बाइबल में कलीसियाई अगुओं के लिए जो आत्मिक योग्यताएं हैं, वे आज भी अपना उचित स्थान रखती हैं। कलीसिया और उसके अगुओं को नए नियम की शिक्षा पर स्थिर रहना है और वचन में जिसे पाप कहा गया है उसे पाप ही मानना चाहिए। तब वह कहता है, शुद्ध विवेक, जलते हुए लोहे से दागा गया विवेक नहीं, जैसा पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। मेरे मित्रों, हम यहां आगे पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। ध्यान दीजिए, कलीसिया की सदस्यता पाते ही किसी को भी अति शीघ्र महीने भर में सेवक का उत्तरदायित्व नहीं सौंपना चाहिए। उसे धर्मशास्त्र में व्यक्त अनिवार्यताओं के लिए नियुक्ति से पूर्व परखना आवश्यक है। अब पौलुस सेवकों की पत्नियों के विषय में भी कुछ कहता है। उन्हें भी कुछ अनिवार्यताएं पूरी करना आवश्यक है। पहला तिमोथियुस के पत्र 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। लिखा है गंभीर, उन्हें गंभीर तथा शांत एवं सुशील होना है, दोष लगाने वाली न हो, अर्थात पीठ पीछे बुराई न करे। सेवक की पत्नी पीठ पीछे बुराई करके कलीसिया में बड़ी समस्या खड़ी कर देती है, और इसलिए पौलुस कहता है कि वह दोष लगाने वाली न हो। कहता है सचेत अर्थात शांत चित्त की हो, विश्वास योग्य हो, वह अपने पति प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के कामों के प्रति कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य हो। पहला तिमोथियुस के पत्र 3 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। सेवकों को भी प्राचीनों के समान ही व्यक्तिगत एवं पारिवारिक अनिवार्यताओं को पूरा करना है। अच्छा पद अर्थात प्रतिष्ठा एक निष्ठावान सेवक विश्वास के योग्य माना जाता है। तब कहता है साहस अर्थात गवाही में आत्मविश्वास और निर्भयता। स्मरण रखें कि सेवक का पद मुख्यतः आत्मिक पद होगा। मुझे स्मरण है कि एक सेवक को वरिष्ठ अध्यक्ष का पद दिया गया था, परंतु वह कहता था कि वह वरिष्ठ सेवक के पद के लिए बाइबल का पर्याप्त ज्ञान नहीं रखता है या वह इतना आत्मिक नहीं है। यदि ऐसा था तो उसे एक छोटा सेवक भी नहीं चुना जाना चाहिए था, परंतु क्योंकि वह एक सफल व्यापारी था इसलिए उसे नियुक्त किया गया। मसीह की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने से पूर्व सेवक कोई भी हो उसे आत्मिक अनिवार्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। मेरे मित्रों, यहीं पर हम भूल कर बैठते हैं और हम गलत लोगों को कलीसिया का पदभार सौंप देते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ें और देखें तिमोथियुस के लिए पौलुस का ब्यौरा। तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं। क्यों लिखता है, आइए देखते हैं। पौलुस मकिदुनिया में था और तिमोथियुस एफिसुस में था। पौलुस को आशा थी कि वह शीघ्र ही तिमोथियुस के साथ होगा। पहला तिमोथियुस के पत्र 3 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है कैसा वर्ताव करना चाहिए। मैंने इसे इस पत्र का मुख्य पद चुना है क्योंकि पहला तिमोथियुस कलीसिया के संचालन की पुस्तक है। दूर होने के कारण पौलुस कहता है, मैंने ये बातें इसलिए लिखी हैं कि तू जान ले कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया में कैसा वर्ताव करना चाहिए। जीवते परमेश्वर की कलीसिया, मेरे प्रियो, पौलुस जिस कलीसिया से बात कर रहा है वह सच्ची कलीसिया है, जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। तब वह आगे कहता है कि जो सत्य का खंभा और नींव है। खंभा का अर्थ है टेक या आधार। पौलुस के कहने का अर्थ है कि कलीसिया एक स्तंभ है, आधार है, सत्य का ठहराव है, एक नींव है। यदि कलीसिया के पदाधिकारी सत्य का प्रदर्शन न करें तो कलीसिया निराधार है, उसमें परमेश्वर का सत्य नहीं है। कुछ लोग सत्य को प्रकट करने का दावा तो करते हैं परंतु उनके दैनिक जीवन से सत्य का प्रकाशन कभी नहीं होता है। मुझे एक सेवक का स्मरण आता है जो बहुत बड़ी बाइबल को लेकर के चलता था और उसके बोझ के कारण एक ओर झुक जाता था, परंतु वह एक ऐसा मनुष्य था जिस पर आप निर्भर नहीं कर सकते या नहीं रह सकते थे। उसकी निष्ठा पर सदा ही संदेह होता था। उसने अपनी कलीसिया को बहुत हानि पहुंचाई और उसकी प्रतिष्ठा को गिराया। पौलुस कलीसिया को आचरण के निर्देश देता है कि वह संसार में प्रभु यीशु का प्रदर्शन करे और सत्य की घोषणा करे। जी हाँ, आज मुझे और आपको, हम हर एक विश्वासी को चाहिए कि हम प्रभु यीशु का प्रदर्शन करें और सत्य की घोषणा करें। यदि हम अपने आचरण में सही रीति से चलते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर की महिमा होती है और हमारे जीवन के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा लोग सत्य परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता को जानने पाते हैं। क्या आज आप प्रभु यीशु का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या लोग आपको देख करके कहते हैं कि यह व्यक्ति यीशु का व्यक्ति है, एक विश्वासी है, एक सच्चा व्यक्ति है? यदि नहीं, तो आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है कि मैं कहां पर कमजोर हूं। मेरे प्रियो, पौलुस कलीसिया को भी आचरण सिखाता है कि किस प्रकार से हमें कलीसियाई जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
धन्य है वो जो मन के दीन है। पुत्र वो कहलाए, वो जो मेल मिलाप कराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए, प्रभु के कारण जाए सताए, प्रभु के कारण जाए सताए, स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन।